ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल पेरिस में 14वें भारत फ्रांस मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मंच को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने व्यापारिक संबंध मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान दोनों देशों के उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों ने एक साथ आकर रक्षा, एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत के बढ़ते आकर्षण पर प्रकाश डालते हुए इसकी स्थिर नीतियों और हाल के आर्थिक सुधारों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी कंपनियों को रक्षा, ऊर्जा, विमानन, अंतरिक्ष, फिनटेक और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से भारत ट्रेड नेट की शुरुआत की जा रही है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% FDI के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कारिस ने रेखांकित किया कि भारत और एस्टोनिया के बीच प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंध लोकतंत्र, विधि सम्मत शासन, स्वतंत्रता तथा बहुलतावाद के मूल्यों के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल पेरिस में AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी मानवता को लाभ सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल दिया है। गृहमंत्री ने कहा है कि आतंक वित्त पोषण की निगरानी, नार्को आतंकवादी मामलों पर नजर और जम्मू कश्मीर में पूरे आतंकी तंत्र को समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में कल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। गृहमंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की शीतकालीन कार्य योजना की भी समीक्षा की। सर्दियों में पराली जलाने की घटना को कम करने के लिए एक संसदीय समिति ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की तरह धान के अवशेषों के लिए भी न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की है। कल राज्यसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में अधीनस्थ विधान समिति ने सुझाव दिया कि इसके लिए पराली की प्रति इकाई मूल्य की समीक्षा होनी चाहिए और खरीफ फसल के मौसम से पहले वार्षिक आधार पर इसे अधिसूचित किया जाना चाहिए। प्रयागराज में आज महाकुंभ का माघी पूर्णिमा स्नान चल रहा है। कल्पवास के विशेष अनुष्ठान के समापन के प्रतीक इस स्नान का विशेष महत्व है। इस वर्ष इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अवसर पर विशेष यातायात व्यवस्था के साथ ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेला 13 जनवरी को आरंभ हुआ है। अब तक 46 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई है। चालू वित्त वर्ष में देश का कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह वार्षिक आधार पर 14.69% की वृद्धि के साथ 17,78,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 19% की अधिक वृद्धि हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हमास ने यदि शनिवार दोपहर तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया तो गजा युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा। हमास ने इससे पहले कहा था कि युद्ध विराम में उल्लंघन उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वे अब बातचीत नहीं हो सकती और इसराइली बंधक समूह की आगामी रिहाई वे अनिश्चित काल तक टाल देगा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पीठ में चोट के कारण ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल रात कहा कि हर्षित राणा को बुमराह की जगह टीम में शामिल किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर बाद 1:30 से शुरू होगा। भारतीय टीम पहले ही श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।